أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وهو خير الناصر ومعين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، أما بعد. السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام کو لے کر. پروگرام میں آپ کا سواگت ہے. پچھلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے قضاوت کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے، جس میں ہم نے آپ کے سامنے قاضی کے شرائط بیان کیے تھے اور قضاوت کے مختلف احکام کے کس صورت میں حرام ہے، کس صورت میں واجب ہے، کس صورت میں مستحب ہے، یہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا. اور اس کے بعد میں ایک سوال اور اس کا جواب بھی پیش کیا تھا. آج یہاں پر ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ قاضی کی یعنی جج کی کیا ذمہ داریاں ہیں. یعنی اسلامی طریقے سے جس کو جج کے عنوان سے منسوب کیا جاتا ہے، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں. سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ برابری سے کام لے. دونوں کون؟ یعنی فقہ اصطلاح میں جنہیں مدعی اور مدعا علیہ کہا جاتا ہے. سب سے پہلے میں ان اصطلاحوں کی آپ کے سامنے وضاحت کر دوں. مدعی اس کو کہتے ہیں جس نے کورٹ میں آ کر کوئی مقدمہ دائر کیا ہے. مدعا علیہ اسے کہتے ہیں جس کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا ہے. اور مدعا بہ اس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں مقدمہ دائر کیا گیا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کورٹ میں آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ مثلا ایک نام میں یہاں پر فرضی بتاتا ہوں، مثال کے طور پر جو ہے وہ خالد کورٹ میں آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ میرے 100 روپے چوری ہو گئے ہیں، یا میرے 100 روپے مثلا جو ہے وہ میرے 100 روپے زید نے چرا لیے ہیں. مثال کے طور پر آنے کے بعد یہ دعویٰ کرتا ہے. تو ان میں جو ہے یہاں تین چیزیں ہیں، ایک تو دعویٰ کرنے والا، دوسرے جو ہے وہ جس کے خلاف مقدمہ کیا گیا وہ، اور تیسرے جو ہے جس چیز کے بارے میں. دعویٰ کرنے والا خالد ہے، خالد نے مقدمہ دائر کیا کہ میرے 50 روپے، یہ 50 روپے یا 100 روپے، 1000 روپے، 2000 روپے، جتنے بھی روپے ہیں، یا کوئی اور چوری، یا کوئی قتل، یا کسی بھی طریقے کا کوئی بھی کیس. تو جس نے دعویٰ کیا ہے وہ ہے مدعی علیہ، جس نے جو ہے وہ کورٹ میں مقدمہ دائر کیا ہے وہ ہے مدعی. اور اسی طریقے سے جس کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا، یعنی خالد نے دائر کیا، خالد ہو گئے مدعی. اور مثال کے طور پر جو ہے وہ زید کے خلاف دائر کیا گیا تو زید ہو گئے مدعا علیہ. اور پیسوں کے بارے میں، چوری کے بارے میں جو ہے وہ مقدمہ کیا گیا ہے تو چوری کیا ہوگی؟ چوری ہوگی مدعا بہ، یعنی پیسوں کا چوری ہونا، یا قتل ہو جانا، یا کوئی اور صورت. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ قاضی کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ قاضی کی ذمہ داری یہ ہے کہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ برابری سے کام لے، دونوں کو ایک نگاہ سے دیکھے، یعنی مقدمہ دائر کرنے والے کو بھی، جس کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا ہے اس کو بھی. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی کوئی بات ثابت نہیں ہوئی ہے. کن کن چیزوں میں برابر سے دیکھے؟ سلام کرنے میں، یعنی اگر ایک کو سلام کیا ہے تو دونوں دوسرے کو بھی سلام کرے، تاکہ دونوں کو جو ہے دونوں میں سے کسی ایک کو بھی کسی طریقے کا کوئی احساس نہ ہو. اگر جو ہے وہ جس طریقے سے ایک کے سلام کا جواب دیا ہے، اسی طریقے سے دوسرے کے سلام کا جواب دے. اسی طریقے سے جو ہے وہ بیٹھنے کے سلسلے میں، یعنی اس طریقے سے مثلا جو ہے بیٹھنے کے لیے اگر کہتا ہے تو جس طریقے سے ایک کو بیٹھنے کے لیے کہتا ہے، ویسے دوسرے کو بیٹھنے کے لیے. اسی طریقے سے جو ہے دونوں کو دیکھنے کے سلسلے میں برابر دیکھے. اسی طریقے سے جو ہے گفتگو کرنے کے سلسلے میں دونوں کے ساتھ ایک ہی طرح سے گفتگو کرے، ایک ہی طریقے سے دونوں کو دیکھے. یعنی کہ ایک کو جو ہے وہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھے اور دوسرے کو جو ہے وہ بڑی محبت کی نگاہوں سے دیکھے. اسی طریقے سے جو ہے وہ گفتگو کرنے میں جو خوش روئی جو ہونی چاہیے، یعنی گفتگو کرنے کے درمیان جو لطافت اور جو نرمی ہوتی ہے، وہ بھی دونوں کے ساتھ برابر ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے انصاف اور عدل میں بھی دونوں کے ساتھ برابری سے کام لے. دوسرے جو ہے وہ پہلے اس سے سوال کرے جو پہلے دادگاہ میں آئے، جو پہلے کچہری میں آیا ہے، جو پہلے کورٹ میں آیا ہے، پہلے اس سے سوال کیا جائے. और उसके बाद जो है वो दूसरे से। लेकिन अगर पहले आने वाला राजी हो जाए कि पहले मुझसे नहीं, जो मेरे बाद आया है उसी से सवाल कर लिया जाए, तो कोई हर्ज नहीं है। इसी तरीके से जो है अगर कोई काजी से, अगर कोई जज से कोई सवाल नहीं करता है, यानी दोनों लोग आ गए हैं, मुकदमा दायर करने वाला भी जिसके खिलाफ मुकदमा हुआ है वो भी, दोनों कचहरी में आ गए हैं, तो ऐसी सूरत में अगर दोनों में से कोई भी काजी से कोई सवाल नहीं करता है, तो जो भी पहले बात को शुरू कर देता है, यानी काजी ने अगर किसी से सवाल नहीं किया तो जो भी पहले बात को शुरू कर देता है, काजी को पहले उसकी बात की तरफ तवज्जह देनी चाहिए, उसकी बात को सुनना चाहिए। लेकिन अगर इत्तेफाक से दोनों ने साथ में शुरू कर दी, यानी इधर मुकदमा करने वाला बोलना चाहता था, जैसे उसने बोलना शुरू किया फौरन जिसके खिलाफ मुकदमा शुरू किया गया उसने भी बोलना शुरू किया, तो ऐसी सूरत में जो भी जज के दाहिनी तरफ है उसकी बात जो है वो पहले सुननी चाहिए और जो बाएं तरफ है उसकी बात बाद में। इसी तरीके से अगर मुद्दा अलैह यानी जिसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है, अगर वो मुकदमा दायर करने वाले की बात को काट देता है, मिसाल के तौर पर एक इंसान ने कोर्ट में आने के बाद मुकदमा दायर किया, जिसके खिलाफ मुकदमा दायर किया था, अभी ये मुकदमा दायर करने वाला जो है बात कर रहा था जज से, और बीच में जो है वो जिसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है वो बोल पड़ता है। देखें, बोलने का हक है, लेकिन पहले एक आदमी अपनी पूरी बात कह दे, उसके बाद जो है वो दूसरा आदमी अपनी बात कहे। लिहाजा अगर जिसने मुकदमा दायर किया है उसकी बात को काट देता है वो इंसान जिसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है, तो ऐसी सूरत में जो है जिसने बात काटी है उसकी बात को नहीं सुना जाएगा, यहाँ तक कि जो है पहले जज मुकदमा दायर करने वाले की पूरी बात को सुन ले और जो है उसके सवाल के जवाब को दे दे, उसके बाद जो है वो दूसरे की बात सुने। लेकिन अगर जो इंसान पहले बात कर रहा था, यानी मुकदमा दायर करने वाला, वो बात कर रहा था, जिसके खिलाफ दायर किया वो बीच में बोल पड़ा, अगर खुद मुकदमा दायर करने वाला राजी हो जाए कि पहले इसी की बात सुन लीजिए, तो ऐसी सूरत में जज के लिए कोई हर्ज नहीं है, जज चाहे तो बात काटने वाले की बात का भी जवाब दे सकता है। इसी तरीके से जो है एक जिम्मेदारी काजी और जज की ये है कि उसके लिए ये बात जायज़ नहीं है कि वो दोनों में से किसी एक को कोई ऐसी बात बताए कि जिसके ज़रिए से जो है वो दूसरे पर गलबा हासिल कर ले, यानी दूसरे से जो है वो ऊपर चला जाए, यानी दूसरा जो है उसके सामने जेर हो जाए और ये जबर हो जाए। जज को ये हक हासिल नहीं है। मिसाल के तौर पर एक इंसान आता है, आने के बाद जो है वो एक केस दायर करता है कोर्ट में, लेकिन जो है वो जब अपने केस को बयान कर रहा है तो इस तरीके से बयान कर रहा है कि उसकी बात में दम नहीं है, बात में उसकी जान नहीं है, यानी ऐसा लग रहा है जैसे ख्यालात में बातें कर रहा है, यानी खुद उसको यकीन नहीं है, इत्मीनान नहीं है, इस तरीके से उसकी बातों से लग रहा है, तो ऐसी सूरत में जज उससे कहे कि उसके कान में मसलन जो है वो कहे या उसको समझाए कि इस तरीके से बात करो कि तुम्हारी बात में दम पैदा हो जाए, सीना तान कर बात करो या डट कर बात करो या पूरे यकीन के साथ बात करो, और इसके ज़रिए से जो है वो क्या होता है, वो दूसरा इंसान जो है जिसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जा रहा है वो जो है पस्त हो जाता है, ये काम जो है वो जज के लिए जायज़ नहीं है। इसी तरीके से जज के लिए जो है वो कोई और ऐसा काम भी जायज़ नहीं है कि जिससे जो है वो एक तरफ बहादुर और कवि हो जाता है और हावी हो जाता है दूसरे वाले शख्स पर। मिसाल के तौर पर जो है वो जज एक शख्स से कहे, यानी जो मुकदमा दायर कर रहा है उससे कहे कि तुम इस तरीके से बातें करो जैसे तुम्हें अपनी बातों पर पूरा यकीन है, यानी ये ना कहो कि शायद इसी ने ये काम किया होगा, बल्कि ये कहो कि इसी ने ये काम किया है, तभी जो है वो तुम्हारी बात को अदालत मानेगी और तुम्हारी बात पर कोई एक्शन लिया जाएगा। इस तरीके की बातें जो हैं वो जज के लिए जायज़ नहीं है कि वो दोनों में से किसी से भी कहे, जज को ये सारी बातें जो हैं वो नहीं कहनी चाहिए। या इसी तरीके से जज जो है वो बताए कि किस तरीके से जो है वो किसी के खिलाफ बोला जाता है, किस तरीके से अदालत में बात की जाती है, किस तरीके से अपनी बातों को बयान किया जाता है, ये अगर ये भी वो जो है किसी एक को बताता है ये भी उसके लिए जायज़ नहीं है, बल्कि उसका काम है सिर्फ फैसला सुनाना। लोग आएँ, आने के बाद जो है वो अपने केस को उसके सामने बयान करें और वो भी जो है वो दोनों तरफ के लोगों की दलीलों को सुने, उसके बाद फैसला सुनाए। इसी तरीके से जो है वो और भी ऐसी बातों से जज को परहेज़ करना चाहिए कि जिससे जो है वो किसी एक की दिल आज़ारी हो। अलबत्ता फैसले के सिलसिले में नहीं, फैसला तो जज जो है जब वो नतीजे पर पहुंच जाएगा और वो देख लेगा कि हकीकत क्या है, हकीकत सबके सामने वाजे हो जाएगी, तो अब यहाँ पर ये नहीं देखना है कि किसी की दिल आज़ारी हो रही है नहीं हो रही है। क्यों? इसलिए कि जिसने गुनाह किया है तो उसको तो सज़ा देनी ही देनी है, लेकिन जब तक बात वाजह नहीं हो जाती है तब तक जो काजी की जिम्मेदारियां हमने बयान की हैं उस वक्त तक जो है उन तमाम चीज़ों की उसको रियायत करनी चाहिए। अब यहाँ पर जो है वो हम आपके सामने सबसे पहले उस शख्स के शराइत बयान करेंगे कि जो कोर्ट में केस दायर करने आया है। उसकी शराइत ये हैं, सबसे पहले तो कि वो बालिग होना चाहिए, यानी कोई नाबालिग बच्चा अगर केस दायर करता है तो उसके केस को अहमियत नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पर ये सवाल हो सकता है कि जनाब अगर किसी नाबालिग बच्चे के साथ जो है वो कोई नाइंसाफ़ी हो जाती है, उसके हक़ को मार लिया जाता है, तो उसकी बात को क्यों नहीं सुना जाएगा? यहाँ पर मकसद सिर्फ ये है कि यानी वो खुद केस दायर नहीं कर सकता है, उसके वली जो हैं, उसके बुज़ुर्ग जो हैं, वो आकर केस को दायर कर सकते हैं। दूसरी ये कि आकिल होना चाहिए, इसलिए कि जो इंसान पागल है या दीवाना है उसको क्या मालूम कि कैसे केस करना है, किन बातों पर केस करना है। तीसरी शर्त ये है कि अगर जो दावा वो करने के लिए आया है वो माल के सिलसिले में है, पैसों वगैरह के सिलसिले में है, तो वो दीवानगी की वजह से जो है हाकिम शरा की तरफ से उसको उसका माल खर्च करने के लिए मना ना किया गया हो, यानी अगर केस जो है वो माल दौलत के मामले में है। इसी तरीके से जो है वो दावा जो करने के लिए आया है, जो भी शख्स या किसी के खिलाफ केस करने के लिए आया है, वो इंसान जो है ऐसा होना चाहिए कि या तो केस खुद उसी से मरबूत हो, यानी उसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसके घर में चोरी हुई है, या फिर ऐसे पे यानी ऐसे के सिलसिले में हो कि जिस पर उसको विलायत हासिल है, यानी जिसका वो सरपरस्त है, यानी खुद उसके घर में चोरी नहीं हुई, यानी उसके साथ जो है नाइंसाफ़ी नहीं है, उसको किसी ने नहीं मारा है, बल्कि ऐसे बच्चे को किसी ने मारा है कि जिसका ये शख्स वली था, तो अब ये जो वली जो है ये जाकर केस करेगा, या जिसका ये वकील है, मिसाल के तौर पर किसी ने अपना वकील किसी को बना दिया और बाद में जो है मुवक्किल के घर में खुदा न खास्ता चोरी हो जाती है, तो अब वो खुद तो है नहीं, तो उसका जो वकील है वो जाकर जो है उसकी तरफ से केस करेगा। यहाँ पर जो है ये चंद शरायत हमने आपके सामने बयान की। एक और शर्त है, आखिरी शर्त, और वो ये है कि उसको अपने केस के बारे में यकीन हो कि मैं जो केस कर रहा हूँ यकीनन ये सही है। मिसाल के तौर पर वो जो केस करने के लिए जा रहा है, अगर चोरी के सिलसिले में कर रहा है तो चोरी हुई हो तब जाकर केस करे, ना ये कि उसको शक हो कि शायद फला जगह पर जो है वो चोरी हो गई होगी, लाओ जाकर जो है वो केस कर दें, यानी यकीन होना चाहिए, बगैर यकीन के केस नहीं किया जा सकता है। ये मुद्दई के शरायत थे, यानी जो केस दायर करता है। अब हम चंद शरायत आपके सामने उस शख्स के करेंगे, बयान करेंगे कि जिसके खिलाफ केस किया जाता है। उनमें से सबसे पहली शर्त तो ये है कि वो इंसान मौजूद हो। लिहाजा ऐसे इंसान के बारे में जो मौजूद ही नहीं है, उसके बारे में जो है वो केस नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा इंसान जो मर जाए, उसके बाद जो है वो उस पर केस किया जाए, जब वो मौजूद ही नहीं है तो उसके बारे में क्या केस किया जाएगा? दूसरे ये कि मालूम होना चाहिए कि झगड़ा किस बात का है, और ये भी मालूम होना चाहिए कि किसके खिलाफ जो है वो केस करना है। लेकिन सबसे पहली शर्त जो हमने आपके सामने बयान की वो ये कि वो मौजूद हो, यानी मर ना गया हो, गायब ना हो। अगर मर वर गया है, मौजूद नहीं है, तो उसके खिलाफ केस नहीं किया जा सकता, चूंकि वो है ही नहीं, तो केस क्या किया जाए, किस पर केस किया जाए? दूसरी बात मालूम होनी चाहिए कि केस किसके खिलाफ कर रहे हैं, ये नहीं कि जो है वो केस किया जाए और ये ही मालूम ना हो कि किसके खिलाफ केस कर रहे हैं, इस केस को भी जो है वो कोई अहमियत नहीं दी जाएगी। मिसाल के तौर पर कोई इंसान जो है वो कचहरी में जाए और जाने के बाद जो है वो कचहरी में जाने के बाद ये कहता है कि मेरे जो है वो 100 रुपये चोरी हो गए हैं, या तो उसने चुराए होंगे, या उसने चुराए होंगे, या उसने चुराए होंगे, या उसने चुराए होंगे, 10 आदमी का नाम गिना देता है याया करके, और ये मालूम नहीं है किसी के बारे में कि किसने चुराया है। ऐसी सूरत में जो है वो उस केस को भी अहमियत नहीं दी जाएगी। दोस्तों, हमारा आज का प्रोग्राम यहीं पर तमाम होता है। अगले प्रोग्राम में फिर आपके सामने हाजिर होंगे और कजावत के अभी जो बाकी अहकाम हैं उनको आपके सामने बयान करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।